सुनाए। ओम शांति। हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक बहुत प्रेशियस जिविल, हमारे बाबा की राइट हैंड सारिका बहन का हम मंच पे स्वागत करते हैं और बहनों से निवेदन करती हूँ सारिका बहन का फूलों से, गुलदस्ते से, बैज से स्वागत करे, सम्मान करे। आप सब तालियों से स्वागत करेंगे। आपने देखा ही है सारिका बहन बहुत ही कुशल यहाँ मंच संचालक है। बहुत सुंदर तरीके से आपने कल्चरल प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया है ना, सबको पसंद आया था। और आप बहुत ही क्रिएटिव है, तो केवल बोलने में ही नहीं लिखने में भी, तो आपके बहुत सुंदर आर्टिकल्स इंग्लिश हिंदी ये मैगजीन्स में, हमारे जो वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन है उसमें छपते हैं, ज्ञानामृत मैगजीन है इसमें आपके बहुत सुंदर पोएम्स भी आते हैं, और साथ में नृत्य में भी बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, कराते हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आपकी बहुत सारी विशेषताएं भगवान ने आपको नवाजा है। आप पिछले 30 वर्षों से इस विद्यालय में बहुत एक्टिव होकर के सेवाएं दे रहे हैं, और आप कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं। आपने LIC ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, अमूल डेयरी, रेलवे, लोको पायलट, वसई, HT हार्नेस आदि आदि बहुत सारे कॉरपोरेट में आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते रहते हैं समय प्रति समय। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है समय चक्र। अभी हमने सुना, एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहती हूँ। पुस्तक कहती पढ़ना सीखो, पढ़कर आगे बढ़ना सीखो, नदियों जैसा बहना सीखो, अपनी राहें चुनना सीखो, पर्वत कहते चढ़ना सीखो, ऊंच पथ पर बढ़ना सीखो, कोयल कहती गाना सीखो, दुख में भी मुस्कुराना सीखो, समय चक्र कहता योग लगाना सीखो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना सीखो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना सीखो। तो समय भी हमें कुछ कह रहा है, तो समय की पुकार को हमें सुनना है, समझना है और वैसे अपने प्लान बनाने हैं। तो लीजिए सुनेंगे सारिका बहन से समय चक्र का रहस्य।
ओम शांति। पिछले 3 दिनों से आप सभी कंटिन्यूस सुनते जा रहे हैं, तो अपने आप को चार्ज्ड आप फील कर रहे हैं या टायर्ड फील कर रहे हैं? चार्ज फील कर रहे हैं। ये ऐसे स्थान पर आप आए हैं कि यहाँ कदम रखते ही अंतरात्मा जाग उठती है, और कुछ न करे, कुछ न सुने तो भी ऐसे लगता है कि कुछ सुनहरे वाइब्स हमारे अंदर जा रहे हैं। और इतने दिन से हम आप लोगों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुबह 4 बजे के मेडिटेशन में भी आप सभी पहुंच जाते हैं। फर्स्ट सेशन उठना बड़ा मुश्किल होता है घरों में तो शायद इतने भोर में नहीं उठते होंगे, लेकिन यहाँ पर आप सभी उठ जाते हैं। उठने में डिफिकल्टी लगती है? नहीं लगती? चलो, तो ये ग्रुप को हम लोगों ने, हमारी टीम ने देखा और बड़ी दीदी ने भी देखा और कहा कि ये ग्रुप बहुत ही एंथुजियास्टिक ग्रुप है, तो एक बार आप सभी के लिए तालियां हो जाए। नहीं तो हमारे हिसाब से ये 3-4 दिन में बहुत सारा आपको सुविधाएं देनी थी, बहुत सारी चीजों का लाभ भी कराना था, तो शेड्यूल थोड़ा टाइट भी लगा होगा, लेकिन जैसे दिनचर्या थी वैसे आपने फॉलो किया। इसके लिए वास्तव में आप सभी को थैंक्स है कि आप उस अनुसार चले, और जो लाभ लेना था, जो लक्ष्य रखा था कि आपको लाभ मिले। हमारी बड़ी दीदी का संकल्प था कि सबको बहुत अच्छी तरह से खुशी मिले और एक अवेयरनेस आए सभी के अंदर। तो उस अनुसार आप सभी ने उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया और अपने आप को ऐसे ऐसे अवेयर करते भी जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है समय चक्र, जिसको हम काल चक्र भी कहते हैं। वर्तमान समय सभी बहुत टाइम कॉन्शियस हो ही गए हैं। आज न्यूज़पेपर में जो टाइम प्रेडिक्शन का कॉलम है वो जरूर कई लोग पढ़ते हैं। कई लोग मानते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को अपडेट करने के लिए समय के प्रेडिक्शंस को सुनते जरूर है, पढ़ते जरूर है। तो समय भी कुछ पुकार रहा है, कुछ मांग रहा है। समय हमसे एक प्रतिउत्तर मांग रहा है। समय की पुकार क्या हमने कभी सुनी? समय वर्तमान दिखाता है और यही समय कल भूतकाल बन जाएगा, और वर्तमान में किए हुए कर्म भविष्य में हमको फल प्राप्त कराएंगे। अक्सर करके हम जब फ्री बैठे होते हैं या जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं, जब हमारे पास ऐसा कोई आइसोलेटेड टाइम होता है, तो मनुष्य अक्सर करके पास्ट में होता है। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, या फ्यूचर की चिंता करता है कि आने वाले कल में क्या होगा, परसों क्या होगा। हम बहुत कम प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, वर्तमान में बहुत कम रहते हैं, और इसीलिए हम वर्तमान में एंजॉय नहीं कर पाते। ब्रह्मा कुमारी संस्था में डॉक्टर गिरीश पटेल, जो जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं, यूट्यूब में सुना भी होगा आपने, वो हमेशा कहते हैं कि वर्तमान को एंजॉय करो। वो एग्जाम्पल देते हैं कि चाय सामने आई है तो उसके एरोमा को लो, उसके कलर को देखो, एक एक सिप एंजॉय करो। तो क्या हम वर्तमान में हैं? अभी आप सभी डायमंड हॉल में बैठे हैं, तो अभी सभी प्रेजेंट मोमेंट में हैं? या 8 बजे सेशन होगा तो ब्रेकफास्ट में जाना है, या आज कई लोगों की टिकट होगी तो पैकअप करना है, रिटर्न जर्नी करना है, उसमें है या इसमें, इस समय इधर ही बैठे हैं? कौन कौन समझते हम प्रेजेंट टाइम में? जरा हाथ उठाएंगे। चलो बहुत अच्छा, सभी प्रेजेंट टाइम में आ गए। क्योंकि कहा जाता है कि एक्सपीरियंस द स्टिलनेस ऑफ माइंड एंड लिव फॉर द मोमेंट। हमारे सामने जो समय चल रहा है उसको एंजॉय करें, उसको देखें। और जो वर्तमान में जीता है उसको समय कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि कहते हैं कि समय कभी धोखा भी दे देता है, समय कभी पछाड़ता भी है। अब ये समय के साथ चलने के लिए, समय की पुकार को सुनने के लिए कुछ बातों को हमें जानना है, आज समझना है, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। समय से डरना नहीं है, क्योंकि समय हमें बहुत हेल्प भी करता है। कई लोग सोच समझ कर, अपने विवेक को जागृत कर समय पर कार्य करते हैं या परिस्थितियों का सामना करते हैं तो वो आगे बढ़ते रहते हैं। कई है जो विवेक जागृत न होने के कारण सोचते ही रह जाते हैं, तो फिर समय धोखा भी देता है। अब जो चीजों को हम समझेंगे, एक अवेयरनेस लाएंगे, तो समय के साथ चलेंगे। हो सकता है कि समय के एक कदम अहेड भी जा सकते हैं। तो ये काल चक्र को समझना बहुत जरूरी है। इसको समय चक्र भी कहते हैं। चक्र अर्थात जो नित्य चलता ही रहता हो, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, न आदि है न अंत है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट भी है, परंतु फिर भी वो नित्य चलता ही रहता है। प्रकृति के कई चक्र हम देखते हैं और उस रोटेशन में हम भी हैं, जैसे जीवन चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, साल का चक्र है। आज साल का चक्र है तो जनवरी से लेकर दिसंबर हो जाता है, फिर जनवरी आता है। ऐसे नहीं कि दिसंबर के बाद चैप्टर क्लोज होता है, फिर हम न्यू ईयर मनाते हैं। जीवन चक्र है तो एक बच्चे का जन्म होता है, युवा है, गृहस्थ है, वृद्ध है, और फिर शरीर छोड़ने के बाद पुनः जाकर बच्चा बनता है। अगर ऋतुओं का चक्र हम देखें तो भी ऋतु बदलते रहते हैं, फिर गर्मी आती है, फिर ठंडी आती है। दिन और रात का चक्र है तो वो भी रोटेशन में है। तो चक्र माना जो नित्य चलता ही रहता है। अब हर चक्र की चार स्टेजेस है। जैसे दिन और रात का चक्र है तो सुबह, दोपहर, रात, शाम और रात होता है। 3 घंटे का एक प्रहर होता है, ऐसे 8 प्रहर होते हैं जो रोटेशन में होते हैं। ऋतु भी देखे तो ग्रीष्म ऋतु है, फिर बरसात आती है, फिर शीत है, फिर हम जो है बसंत ऋतु देखते हैं। तो हर चीज की 4 स्टेजेस है। ऐसे ये समय चक्र जिसको हम काल चक्र कहते हैं, इसकी भी 4 स्टेजेस है, 4 युग में विभाजित है। सबसे पहले है सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान समय जो हम बैठे हैं, कलयुग। यहां स्वस्तिका बताई गई है। आपको स्क्रीन में चित्र दिख रहा है ना, काल चक्र का, सृष्टि चक्र का। स्वस्तिका बताई गई है। आज कोई भी शुभ कार्य करना हो तो हम स्वस्तिक बनाते हैं। कभी आपने सोचा कि ये स्वस्तिक का जो चिन्ह है, इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये शुभ है और समृद्धि का प्रतीक है। आज एडॉल्फ हिटलर थे तो वो उल्टा स्वस्तिक बनाते थे, वो भी इस चिन्ह को मानते थे पर उल्टा स्वस्तिक बनाते थे। और हमने उनकी लाइफ हिस्ट्री को भी स्टडी किया है ना, कि बहुत सारे कर्म उनके अपने मर्जी से होते थे, जो उनके अपने रूल्स के अनुसार होते थे। और ये जो चक्र है, इसको, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये स्वस्तिक के पीछे रहस्य है। जो सबसे पहला युग इस सृष्टि पर शुरू हुआ, तब समय था सतयुग, जिसको हम स्वर्ग कहते, वैकुंठ कहते, पैराडाइज कहते, बहिष्ट कहते। एक समय सृष्टि में ऐसा आता है जब महापरिवर्तन इस सृष्टि में होता है, और उस महापरिवर्तन के बाद सभी आत्माएं इस सृष्टि से प्रयाण होकर अपने घर, उस ब्रह्म तत्व में जाते हैं, अपने परमात्मा का लेसन सुना, उनका निवास स्थान सुना, उनसे कनेक्ट होने की विधि भी सीखी कि कैसे हम परम धाम जाए और ईश्वर से कनेक्ट हो। तो वो स्थान सिर्फ परमात्मा का नहीं, पर हम मनुष्य आत्माओं का भी घर है। तो एक समय सृष्टि में आता है कि सभी आत्माएं अपने घर पहुंचते हैं, फिर इस सृष्टि में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है, बहुत बड़ा चेंज होता है, और फिर कुछ आत्माएं जो यहां से प्योर बनकर गई है, अपने अंदर वो डिविनिटी प्राप्त करके पुण्य का खाता जमा करके गई है, वो आत्माएं देवताएं बनकर इस सृष्टि पर जन्म लेती है, और उसको सतयोग स्वर्ग कहा जाता है। यहां स्वस्तिका का पोजीशन राइट हैंड बताया गया है, राइट हैंड राइटियस कर्म की निशानी। तो यहां जो भी सोल्स थे जिनको हम देवता कहते हैं, ईश्वर से वरदान प्राप्त की हुई आत्माएं, राइट हैंड एक आशीर्वाद का भी प्रतीक है, ब्लेसिंग का प्रतीक है। तो ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद प्राप्त की हुई आत्माएं सतयुग में जन्म लेती है, और सबसे पहले यहां पर वो स्वर्णिम काल होता है जिसको हम कहते हैं स्वर्ग। यहां आत्माएं 16 कला संपूर्ण होती है, माना परफेक्ट, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो हम कहते 16 कला संपूर्ण चांद, परफेक्ट चांद। तो यहां जो भी आत्माएं होती है ये ईश्वर से वरदान प्राप्त कर, परफेक्शन कंप्लीट कर, अपनी प्यूरिटी की डिग्री को प्राप्त कर, ये यहां से प्रयाण होती है और सबसे पहले वो सतयुग में आती है। और संख्या उस समय कम होती है क्योंकि सोल्स भी प्योर बनकर गई है, वो सोल्स कम है, तो वो स्वर्ग कहलाता है जहां पर थोड़े से देवताएं होते हैं और एक स्वर्णिम काल शुरू होता है। 1250 वर्ष तक सतयुग कहा जाता है। 1250 वर्ष के बाद थोड़ा परिवर्तन होता है और युग परिवर्तन होके त्रेता युग कहते हैं, जहां श्री राम श्री सीता का राज्य शुरू होता है। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, बाल्यकाल में राधे कृष्ण कहलाते, और ये बड़े होकर स्वयंवर होकर जब गद्दी पर बैठते हैं तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का खिताब मिलता है। और यहां पर 1250 वर्ष में 8 जन्म होते हैं, केवल 8 जन्म, तो आयु बड़ी होती है। यहां पर स्वर्ग कहते हैं और वनस्पतियां अपने आप तैयार होती है, जहां पर जो आपने सीन देखा वीडियो में, कई बार वीडियो दिखाया ना कि बहुत सुंदर सीन है, पुष्पक विमान है। शास्त्रों में है कि एक काल ऐसा था इस सृष्टि पे जहां पे वनस्पतियां अपने आप ही तैयार होती थी, तो यही वो समय है कि जहां पर सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित होगा, सुंदर होगा, प्रकृति भी मनुष्य आत्माओं की दासी होगी, जहां पर सुंदर फल फूल और बहुत ही सुगंधित वातावरण होगा, जो हम पैराडाइज स्वर्ग का वर्णन सुनते हैं, श्री कृष्ण का जो है रास विलास देखते हैं, यही वो समय है जब सृष्टि पे सतयुग होगा और लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। 8 गद्दियां कंप्लीट होने के बाद जब युग परिवर्तन होता है तो उस युग को त्रेता युग कहा जाता है, जहां पर श्री राम सीता का राज्य होता है। यहां जन्म थोड़े से बढ़ जाते हैं, जो सतयुग में 1250 वर्ष में 8 जन्म थे वो 12 जन्म हो जाते हैं, और वही आत्माएं स्टार्टिंग में 9 लाख होती है, एंड होते होते 2 करोड़ की संख्या होती है। ये सारी आत्माएं जो सतयुग में राज्य कर रही थी वो फिर युग परिवर्तन होते होते त्रेता युग में ट्रांसफर हो जाता है। और यहां पर 2 कला कम हो जाती है, मनुष्य आत्माएं प्योर होते हैं, निर्विकारी होते हैं, लेकिन फिर भी जो भी चीज इस सृष्टि में निर्माण की गई है उसके अंदर परिवर्तन तो आना ही है, और परिवर्तन आना है इसीलिए धीरे धीरे कम होते होते जो 16 कला संपूर्ण थे वो त्रेता युग में आते आते 2 कला कम हो जाते हैं। इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है, थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी, और जिसमें बताया गया है कि जो डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज होता जाता है ग्रेजुअली, अर्थात जो भी चीज इस सृष्टि में निर्माण की गई है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली चेंज आता है। जैसे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है कि एक जार में बहुत सारे फूड ग्रेन्स को, चावल को, दाल को रखकर उसको ऐसे ही रख दिया, लेकिन देखा कुछ दिनों के बाद वो डिग्रेड होने लगा। उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो यूज करो या न करो वो ग्रेजुअली खत्म होना है। अगर मान लीजिए कि हमने ऐसे ही अनाज को छोड़ दिया, यूज नहीं किया, तो भी वो समय अनुसार परिवर्तन होना है। और अगर उस चीज को बना दिया और बनाने के बाद भी उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो भी उसको परिवर्तन उसके अंदर आना ही है। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी ये बताता है कि जो भी चीज इस सृष्टि पे निर्माण की गई है या एग्जिस्टिंग है वो समय अनुसार परिवर्तन ऑटोमेटिकली होती जाती। तो ऐसे ही सतयुग से जब त्रेता में ट्रांसफर होते हैं कोई विकर्म नहीं होता, बहुत सुंदर समय बीतता है ये देवताओं का, जहां पर एक भी विकार नहीं होते। आज संसार में 5 विकार प्रचलित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है, और इसी के कारण जो है दुख अशांति बढ़ती जा रही। लेकिन वो जो दुनिया थी वो संपूर्ण निर्विकारी थी, जहां पर विकारों का नामो निशान नहीं था और अच्छे सत्कर्म थे। इसलिए देखिए कि श्री नारायण को सत्य नारायण कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। सूर्य से ज्यादा तेजोमयी कुछ नहीं होता, माना अवस्था इतनी हाई होती है और इतनी प्योर होती है, इसीलिए सत्य नारायण सूर्य नारायण कहा। तो इतनी अच्छी अवस्था होते हुए भी लॉ ऑफ एंट्रोपी के तहत धीरे 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 ग्रेजुअली सोल्स में परिवर्तन आता है और 2 कला कम हो जाती है त्रेता युग में। अब और भी आत्माएं ऊपर से जो यहां से 14 कला बन कर गई है, यहां से उतना पुण्य जमा करके गई है, वो आत्माओं का त्रेता में जन्म होता है और फिर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ संख्या होती है। शास्त्रों में 33 करोड़ कोटि देवताओं का गायन है। सतयुग और त्रेता की एक विशेषता है कि वहां जो भी मनुष्य आत्माएं होंगी सभी देवता कहलाएंगे। आज जो भी ह्यूमन बीइंग है, कोई बहुत अच्छे बड़े पोस्ट में है, कोई बहुत आध्यात्मिकता में है, किसी ने संन्यास ले लिया है, कोई और सेक्टर में है, लेकिन सभी ह्यूमन बीइंग्स ही कहलाते। वहां चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे दास दासी हो, सभी देवता कहलाएंगे। इसलिए 33 कोटि देवताओं का गायन है। त्रेता के बाद बहुत सारा ज्योग्राफिकल चेंज भी आता है। ये 2500 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं जहां कंप्लीट सुख, शांति, समृद्धि का राज्य होता है, जिसको हम स्वर्ग कहते, वैकुंठ कहते हैं, जहां पर दुख का नामो निशान नहीं होता। और ये 2500 वर्ष परिवर्तन होने के बाद सृष्टि में बहुत सारा परिवर्तन होता है। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो 23.5 एक्सिस में है, टिल्टेड है, वो अपने एक्सिस में भी रोटेट कर रहा है और सूर्य के आसपास भी उसका रोटेशन है। हम आज देखते हैं न्यूज में कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आज ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, आइस पिघलता जा रहा है, और आसपास के जो कंट्रीज है उसमें जो है अचानक कुछ भी परिवर्तन होता है। ओजोन लेयर में भी हम देख रहे हैं कि होल्स नजर आ रहे, ग्रेविटेशनल पावर भी हम देखते हैं 1.2% में एवरी ईयर वो कम होता जा रहा है। तो ये सारे साइंस हमको साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, सैटेलाइट से कनेक्ट होकर हमको बता रहे हैं, तो ये सारे सिग्नल है एक सृष्टि परिवर्तन के। तो आज जो अर्थ टिल्टेड है 23.5 एक्सिस में, धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वो 22.5 एक्सिस में हो जाएगा, और फिर जो सूर्य की किरणें आज यहां पड़ रही है वो धीरे धीरे परिवर्तन होते डायरेक्ट आर्कटिक एंटार्कटिक आइलैंड्स में पड़ते पड़ते जो आज हम देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, वो ऐसा परिवर्तन। और फिर सतयुग से त्रेता तक ये अर्थ ऐसे ही स्ट्रेट रहेगी, फिर धीरे धीरे वापस वो अपने ओरिजिनल त्रेता के बाद जो परिवर्तन है, जिसमें सतयुग में कहा जाता है कि सोने की दुनिया होगी, जहां सोने के महल होंगे। आज भी हम देखते हैं कि कहां कहां सोना छिपा हुआ है। कई कहते हैं कि अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में सोना है, कई कहते हैं कि कहां है, लेकिन आज वो अदृश्य फॉर्म में है। जब इस सृष्टि का महापरिवर्तन होगा तो वो अपने आप सारा निकल कर आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, जहां गांव गांव में सबके पास सोना भरपूर था, हर नारी सोने से श्रृंगार की हुई होती थी। तो वो ही समय था कि जहां भारत सोने हीरे जवाहरातों से भरपूर था। तो त्रेता युग के बाद जो महापरिवर्तन होगा, तो वो थोड़ा सा परिवर्तन होके चेंज हो जाएगा, और थोड़ा सा एक ज्योग्राफिकल चेंज होगा, जो इतना सब कुछ सतयुग में होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और फिर आएगा द्वापर युग। द्वापर जहां अनेक मत हो जाएगी, विभाजित हो जाएगा। जो सतयुग त्रेता में एक देवी देवता धर्म था, एक मत, एक राज्य, एक शासन पर दुनिया थी, द्वापर युग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। एक तो हमने देखा कि साइंटिफिकली ये ज्योग्राफिकल चेंज होगा सृष्टि पे, धीरे धीरे अनेक धर्म पिताओं के द्वारा धर्म की शुरुआत होगी। तो जो एक धर्म एक राज्य था, वो परिवर्तन होते होते अनेक धर्म में होगा, और समय अनुसार हर एक मैसेंजर ने आकर सृष्टि में बहुत अच्छा ईश्वर का मैसेज दिया। जैसे सतयुग और त्रेता एक डिसिप्लिन वाला युग था, सिद्धांत वाला युग था, कोई लॉ और ऑर्डर नहीं था, पर फिर भी सारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। देवताओं के लिए कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब सिद्धांत खत्म होने लगे, तब सबसे पहले इस सृष्टि में इब्राहिम आए, और उन्होंने जो है सिद्धांत की शुरुआत की। इसलिए हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म है, उसके बाद मुस्लिम धर्म भी आया, तो उसमें कुरान में बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत बने हुए हैं। ईश्वर को याद करने के सिद्धांत, मनुष्य जीवन के अनुशासन के सिद्धांत, वाणी में आने के सिद्धांत, कर्म करने के सिद्धांत, भोजन करने का सिद्धांत। इसलिए हम देखते हैं ना कि जो भी मुस्लिम भाई है वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और उनका समय होता है तो रेलवे के प्लेटफॉर्म में भी रुमाल डालकर बैठ जाते हैं। उनको जरा भी बॉडी कॉन्शियस नहीं होता कि हम यहाँ कैसे बैठे, नीचे कैसे बैठे, क्योंकि उनके धर्म में जो है वो सिद्धांत और नियम बताए गए हैं। तो जब सृष्टि में ये परिवर्तन हुआ, तो इब्राहिम जी ने आकर सिद्धांत दिया। आज से 2500 वर्ष पहले सबसे पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई इब्राहिम जी के द्वारा। फिर आज से 2250 वर्ष पहले गौतम बुद्ध आए, और दो चीजों की कमी विशेष देखी गई, दया और करुणा। उन्होंने दया और करुणा का मैसेज दिया। दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। हर मनुष्य प्राणी पर दया जरूर करनी चाहिए, लेकिन क्या हम देखते दया हो रही है? आज जितने भी चाइनीज रेस्टोरेंट है वहां क्या मिलता है? आज गौतम बुद्ध जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाते हैं, पूजा करते हैं, पर उनके बताए हुए सिद्धांतों पर कितना चल रहे हैं, कितना हम मनुष्य प्राणी पर दया करते हैं, कितनी करुणा करते हैं। तो मैसेंजर ने मैसेज तो बहुत ब्यूटीफुल दिया, लोगों ने कुछ हद तक इम्प्लीमेंट भी किया, पर आज कलयुग में आते आते सभी ये बातों को भूल गए। जब दुनिया में सत्यता खत्म होने लगी, प्यार आपस में खत्म होने लगा, आज हम देखते हैं कि पुराने जमाने में परिवार ज्वाइंट फैमिली आपस में रहते थे, कितने बड़े परिवार हुआ करते थे, 25 लोग, 30 लोग, कई फैमिली में 50 भी लोग आपस में एक साथ रहते थे, पर प्यार से, सत्यता से। लेकिन वो जो प्यार, निस्वार्थ प्यार है, धीरे धीरे खत्म होने लगा, सत्यता खत्म होने लगी, एक झूठ का राज्य आने लगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर डर पैदा होने लगा कि सच बताने से कहीं कुछ गलत न हो जाए, सच बताने से हमसे कुछ छीन न जाए, और इसलिए धीरे धीरे झूठ का सहारा लेना शुरू किया। तब जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने लव एंड ट्रुथ का मैसेज दिया कि लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड, ये कहना शुरू किया। जीसस क्राइस्ट ने क्लियरली लिखा है बाइबल में कि आई एम नॉट गॉड बट आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट एंड वी आर ऑल सन ऑफ द लाइट। हम सभी उस प्रकाश के बच्चे हैं, उस लाइट के बच्चे हैं। जैसे पहले दिन आपको आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ में बताया गया कि आपके अंदर एक इनर एनर्जी है, एक पावरफुल वाइब्रेटिंग यूनिट है यहाँ पर जो वाइब्रेट कर रहा है, जिसको हम लाइट कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने वो रियलाइज किया कि हम सभी ह्यूमन एक सोल है, और वो सुप्रीम सोल हमारा यूनिवर्सल पावर है, ऑलमाइटी गॉड है। और इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि गॉड इज लाइट एंड वी आर ऑल सन ऑफ द लाइट, हम सभी उस प्रकाश के बच्चे हैं। लेकिन जब देखा कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको लगा कि ये अपना धर्म बनाएंगे, अपना बनाएंगे, तो उनके धर्म वालों लोग ने ही, कुछ ज्यूज ने, है ना, उन्होंने ही जो है उनको क्रूसिफायर किया। अगर हम हर धर्म पिताओं की हिस्ट्री देखें ना, तो बस स्ट्रगल किया है लोगों को बेनिफिट कराने के लिए, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है, बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि जब भी कोई चीज दुनिया में नहीं आती है तो लोग जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और इसीलिए कोई भी चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार फिर आज से 1500 वर्ष पहले सन्यास धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, शंकराचार्य आए, उन्होंने सन्यास धर्म की स्थापना की, मोहम्मद आए और मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, और फिर 500 साल पहले इसी कलयुग में गुरु नानक जी आए, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। ग्रंथ सुखमनी में परमात्मा की बहुत अच्छी महिमा है कि वो एक ओमकार है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, निर्वैर है, निर्भय है, अजोनी है, बहुत एक्यूरेट महिमा लिखी है। तो गुरु नानक जी ने भी उस परमात्मा को जाना, समझा, और उनसे कनेक्ट करने के लिए बहुत सुंदर महिमा भी लिखी है। तो समय अनुसार हर धर्म पिताओं ने आकर उस सत्य का परिचय दिया, उस परमात्मा का परिचय दिया। मुस्लिम धर्म में भी कहा जाता है कि अल्लाह एक नूर है, क्रिश्चियन धर्म में भी कहा जाता है गॉड इज लाइट, हम भी कहते हैं कि ईश्वर ज्योति स्वरूप है। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन आता गया, लोगों ने समझा कि नहीं, हमारा ईश्वर कोई और है, ये हमारा ईश्वर है, ये इनका ईश्वर है, पर ईश्वर तो एक है। जैसे घर में माँ होती है तो कोई गुजराती बा बोलेगा, मराठी में आई बोलेंगे, इंग्लिश में मम्मी बोलेंगे, पर रिलेशन तो वही है, व्यक्ति तो वही है। तो ऐसे ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारना शुरू किया। और हर एक ने समझा कि ये हमारा कोई अलग गॉड है और इसीलिए विभाजित होते गए और इसीलिए लड़ाई झगड़ा शुरू हुई। अगर समझते कि वही ऑलमाइटी गॉड है, हम सभी का पिता वही है, तो ये परिस्थिति नहीं होती। लेकिन सभी जो है यही समझते गए और इसलिए सभी अपना अपना धर्म, धर्म पिताओं ने तो सिंपल मैसेज दिया, उन्होंने तो हर एक का कनेक्शन परमात्मा से कनेक्ट करने की कोशिश की, सभी को एक सत्य की राह पे चलाने की कोशिश की और वो सत्य के लिए फाइट किया। उनका ये नहीं था कि हम कोई धर्म स्थापन कर ले, वो तो एक अच्छा मैसेज सिंपल वे में दे रहे थे। उनके बाद उनके फॉलोअर्स ने एक धर्म बना दिया और ये सृष्टि में ये विभाजन शुरू हुआ। जब दुनिया अति तमो प्रधानता में जाने लगी और बहुत इम्प्यूरिटी बढ़ने लगी, तब वो परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण हुआ और भगवान इस सृष्टि पर प्योर बनाने के लिए आए। ये महापरिवर्तन जो सृष्टि पे होना है वो हर एक मनुष्य आत्माओं की प्यूरिटी से होना है। जितना हमारे विचार, हमारे वाणी, हमारे कर्म प्योर बनते जाएंगे, उतना पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। और भगवान का यही मैसेज है, इसलिए गीता में वर्णित है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत में ऐसे धर्म की ग्लानि हुई, मनुष्य धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होते गए, तब इस सृष्टि पर अवतरित होकर मैं ये सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। द्वापर में एक और जहां पर धर्म पिताओं के द्वारा धर्म की शुरुआत हुई, वहां दूसरी ओर भक्ति की शुरुआत हुई। सतयुग त्रेता में सभी देवी देवताएं थे, एक सुखमय संसार था। ईश्वर को पुकारना तब शुरू हुआ जब दुख बढ़ता गया, इसलिए कहते हैं कि दुख में सिमरण सब करें। तो राजा विक्रमादित्य आए, उनके द्वारा सबसे पहला मंदिर भारत में बना सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर की हिस्ट्री आप कभी वहां जाएंगे स्टडी करेंगे तो बहुत सुंदर हिस्ट्री वहां जानने को मिलेगी। शॉर्ट में बताती हूं मैं कि राजा विक्रमादित्य बहुत ही इंटेलिजेंट, ये सतयुग त्रेता पास करके जो भी सोल्स आई द्वापर में वो काफी भक्ति वाली थी और बहुत ही इंटेलिजेंट सोल थी। तो राजा विक्रमादित्य को उस डिवाइन लाइट का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने सबसे पहला मंदिर शिव का मंदिर, कि वो ईश्वर लाइट स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, लेकिन उस लाइट और ज्योति की कैसे पूजा करें, तो उनके द्वारा हुआ। और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे इसलिए उन्होंने मंदिर में वो लिंग भी ऐसे सस्पेंडेड मैग्नेट्स वगैरह लगा के बनाया था। तो वो शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे सोने का मंदिर है भारत में, हीरे का मंदिर है, ये फेमस होता गया और मोहम्मद गजनवी ने फिर उसको 17 बार लूटा, इंडियन हिस्ट्री में ये बताते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे फिर अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होते गए, वो भक्ति के संस्कार जागृत होते गए द्वापर में और जगह जगह मंदिर बनते गए अनेक। एक सबसे पहले एक भक्ति एक अव्यभिचारी भक्ति थी जो एक शिव की ही पूजा करते थे, फिर धीरे धीरे अनेक देवी देवताओं के साक्षात्कार होते गए लोगों को। और जैसे जैसे साक्षात्कार होते गए वैसे वैसे जो है मंदिर बनते गए। अब उसी समय ये सन्यास धर्म भी शुरू हुआ, सन्यासी भी आए। उस जमाने में जो सन्यासी थे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे और वो ट्रांस में जाकर उस समय को, चक्र को, परिवर्तन को देख लेते थे। और इसीलिए कि ये महापरिवर्तन इस सृष्टि पे आने वाला है, ये देखकर उन्होंने एक बात कही कि हर एक के अंदर देखो तो ईश्वर को देखो। वास्तव में जो दुनिया में भगवान को सर्वव्यापी कहा है वो उस उद्देश्य से नहीं कहा कि हर एक के अंदर भगवान बैठा है, कण कण में भगवान बैठा है, लेकिन वो ये चाहते थे कि हर एक के अंदर आप एक अच्छाई को देखो, हर एक के अंदर एक भगवान बसा हुआ है, माना अच्छाई बसी हुई है, सत्य बसा हुआ है, हर एक की ओरिजिनलिटी बहुत अच्छी है। तो ये बताने के लिए उन्होंने कहा जो हम मनुष्य ने उसको अलग रूप में ले लिया। तो वास्तव में ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, पर उनकी अपनी एक वास्तविकता है, अपनी एक पहचान है, अपनी शक्ति है, जो इस धरती पर आकर हम सभी मनुष्य को ये जागृति, ये अवेयरनेस दे रहे हैं। तो ये समय भी एक चला जहां भक्ति की शुरुआत हुई, जहां संन्यास धर्म भी बढ़ता गया, जहां अनेक धर्म बढ़ते गए, जहां साइंटिफिकली भी प्रोग्रेस हो गया। 19th सेंचुरी को कहा जाता है कि द एज ऑफ प्रोग्रेस, जहां पर रेडियम स्टील बना, जहां पर स्टीम इंजन बनी, बोट बना, बाइसाइकल हुई, बग्गी बनी, बहुत सारे जो है 16th सेंचुरी से शुरू होते होते जो है 19th सेंचुरी में बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। जो पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई एक ऋषि मुनि के द्वारा, वो 16th सेंचुरी में हुई, जो जख्म को, स्किन को निकालकर यहाँ जो है जड़ी बूटी लगाकर पैचअप किया था। तो वहां से देखने अगर हम अच्छी तरह से देखें तो जहां भक्ति शुरू हुई, जहां धर्म में विभाजित होने लगे, वहां साइंस भी प्रोग्रेस होता गया, और प्रोग्रेस होते होते द्वापर में ये सारी चीजों में मन चला गया मनुष्य का। जो सतयुग त्रेता में एक मत था, एक राज्य था, जहां तर्क वितर्क नहीं था, मनुष्य कोई भी बात में रीजनिंग नहीं करते थे, ज्यादा सोच विचार नहीं करते थे, वो द्वापर युग में बहुत सोचने लगे, खोज करने लगे, रिसर्च करने लगे, बहुत सारी मिनरल्स मिलने लगे, विटामिन्स मिलने लगे, बहुत सारी चीजों का साइंटिफिकली प्रोग्रेस होने लगा। और ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर 1250 वर्ष के बाद आया कलयुग, जो वर्तमान समय हमारा चल रहा है। हम सभी कहाँ हैं अभी, कौन से युग में? कलयुग में है। कौन कौन समझते हैं हम कलयुग में हैं? जरा हाथ उठाना, ध्यान से उठाना, फिर मैं वापस भी पूछूंगी, एंड ऑफ द सेशन भी पूछूंगी। कौन कौन समझते हैं हम कलयुग में हैं? अच्छा, और बाकी लोग क्या समझते हैं? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो क्या समझते हैं? कहाँ है? अच्छा, जो जानते हैं वो समझते हैं जानते हैं ना आप लोग, इसीलिए। बाकी तो जो नहीं जानते वो यही समझेंगे कि हम कलयुग में हैं। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन आता गया, और कलयुग जहां कलाएं खत्म होती गई, जो 8 कला थी द्वापर में वो कलाहीन होते गए। कला खत्म होती गई माना ऐसा नहीं कि कोई क्वालिटीज खत्म होती गई, लेकिन जो सोच थी हमारी सतयुग त्रेता में, जो प्योर विचार थे, जो आत्मा में सात्विकता थी, वो धीरे धीरे कम होते होते कलयुग में एकदम जो है परिवर्तन आ गया। आज सतयुग त्रेता में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती थी, विचार करने से पहले सब प्रकृति चीजें हाजिर कर देती। रिलेशनशिप में कोई दिमाग नहीं चलता था। द्वापर युग में धीरे धीरे शुरू होते होते आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम कलयुग में रिलेशनशिप का है, क्योंकि विश्वास ही खत्म हो गया है। तो जब विश्वास में परिवर्तन आया, सत्यता में परिवर्तन आया, विश्वास और सत्यता अर्थात हमारी प्यूरिटी की डिग्री, हमारी प्यूरिटी की डिग्री सत्यता और विश्वास के आधार पर ही है कि कौन कितना हम पर ट्रस्ट कर सकता है, कौन कितना हम पर रिलाय कर सकता है, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कितने फेथफुल हैं, कितने ट्रुथफुल हैं। अगर हम ये सवाल अपने आप को पूछें तो क्या जवाब मिलेगा हमें, क्या आंसर खुद से पूछे? तो ये चीजें परिवर्तन हुई कलयुग में, और इसीलिए कहते हैं की कलाएं कम हो गई, प्यूरिटी की कला। ऐसा नहीं है कि कोई कला नहीं है, सभी कुछ है, लेकिन ये चीजों में एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है। और ये चीज को पुनः डेवलप करने के लिए, इमर्ज करने के लिए ईश्वर को इस धरती पर आना पड़ा। भगवान क्या करते हैं? भगवान सिर्फ हमें सत्यता से कनेक्ट कराते हैं, जो हमारी ओरिजिनलिटी है, जो हम हैं, ट्रुथ, एक खुद पर फेथ करना सिखाते हैं। हम जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगते हैं, रोज जब हम आध्यात्मिक नॉलेज सुनने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारी सत्यता प्रवोक होने लगती है। इननेट क्वालिटीज जो अंदर बसे हुए वो एक्सप्लोर होने लगते हैं। तो कलयुग आते 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 ये परिवर्तन हो गया और कलाहीन हो गए। जब कलयुग के एंड पॉइंट पर हम बैठे हैं, क्लाइमेक्स का समय चल रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा कि लोग टाइम प्रेडिक्शंस को बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि सोचते अपने आप को अपडेट करें, विनाश होने के पहले हम संभल जाए। पर जो होना है इस सृष्टि में वो अचानक होना है, परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम समय का चक्र समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें समय को यूटिलाइज करना है, बेस्ट समय के साथ चलना है। हमारे पास सेंटर में कैंसर पेशेंट आती थी, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, कि सिर्फ 6 माह से जिंदा रहने वाली थी। तो हस्बैंड बड़े मुश्किल से उसको लेके आया, मेडिटेशन सेंटर का बोर्ड देखा तो आई और फिर मेडिटेशन करने लगी। कुछ हमको बताया नहीं, सिर्फ हम समझ गए कि पेशेंट है, लेकिन टाइम कुछ बताया नहीं। लेकिन मेडिटेशन करने लगी करने लगी करने लगी, आज 7 साल हो गया जिंदा है, अभी तो बहुत अच्छी तरह से जॉब भी करती है। तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी से हिंदुजा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो एक इंजेक्शंस बने हुए थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे पेशेंट्स के ऊपर थे जिनका विल पावर स्ट्रांग है, तो इनको चूज किया गया, इनका इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में उस बहन ने एक बहुत सुंदर बात कही कि इसके पहले ना मैं समय को महत्व नहीं देती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पास 6 मास ही है, तो एक एक सेकंड की वैल्यू होने लगी मुझे। समय की कीमत मुझे तब समझ में आई जब मेरे पास समय कम था, और आज उस समय को मैं बचा पाई हूं। आज समय ने मुझे वरदान दिया कि मेरी लाइफ स्पैन इंक्रीज होती गई, क्योंकि मैंने समय की कदर करके उसको बेस्ट यूटिलाइज किया। तो हमें भी भगवान समय का चक्र इसीलिए समझा रहे हैं कि हम इसका बेस्ट यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं कि समय को देखकर डर जाए या समय पर ही छोड़ दे, है ना, समय में जो होना होगा होगा। हाँ, गीता में है कि कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। कुछ चीजें समय अनुसार होती है, पर कर्म तो हमें करना ही है। और जो टाइम कॉन्शियस होकर समय को देखकर चलते हैं, समय पर सब करते हैं, समय अनुसार करते हैं, तो वो व्यक्तियों को समय के द्वारा वरदान मिलता है। क्योंकि कलयुग के लिए हम देख रहे, शास्त्रों में बताया गया है, कलयुग के लिए बताया गया है, काफी समय पहले द्वापर युग में ही ऋषि मुनियों ने, जो मैंने आपको बताया कि ट्रांस में जाकर बहुत सारी बातें कलयुग की देख ली थी और लिखी है कि अनाज पुड़ियों में बिकेगा, कन्या अपना वर खुद चुनेगी, आज आसमान से जहर गिरेगा, पानी बोतलों में बिकेगा, मनुष्य मनुष्य को खाएगा, ये सारी बातें शास्त्रों में है। और उस जमाने में लोग पढ़ते थे तो आश्चर्य लगता था कि अनाज तो कोठियों में भरा रहता है, अनाज पुड़ियों में कैसे बिकेगा। लेकिन हम देखते हैं आजकल मॉल में जाकर हम छोटे छोटे पैकेट्स खरीद के लाते हैं, महीने का राशन लाते हैं। पानी बोतलों में बिकेगा, पानी तो नदियों में बहता है, पानी बोतल में कैसे बिकेगा, और पानी के लिए पैसा लगेगा। द्वापर युग में सुन के लोगों को आश्चर्य लगता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं। पहली बारिश में लोग नहाना पसंद करते थे, आजकल कहते हैं एसिड रेन होता है, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए. तो आज आसमान से जहर गिरेगा, ये हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं. कन्या अपना वर खुद चुनेगी. पहले के जमाने में देखा भी नहीं होता था, पता भी नहीं होता था कि पति कौन है, और शादी हो जाती थी. और बाद में पता चलता था कि अरे ऐसा दिखता है, ऐसी दिखती है. लेकिन वो संबंध भी बड़े प्यार से चलते थे, रिश्ते लास्ट तक. आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन मैरिज होता है और ऑनलाइन डिवोर्स भी हो जाता है, ऑनलाइन ही सिस्टम निकला है सब. तो ये समय कन्या अपना वर खुद चुनेगी, और मनुष्य मनुष्य को खाएगा, मनुष्य जानवरों को खाएगा. ये तो शुरू हो गया था, पर आजकल हम देखते कई कंट्रीज है जहां पर वो ह्यूमन फ्लैश को खाया जाता है, ये हो रहा है. मदर टेरेसा की कहानी एक छोटी सी आपको सुनाती हूँ कि मदर टेरेसा एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, और वहां पे कैसे डस्टबिन बंद होते हैं और इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, गाड़ी आती है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन देते हैं, अंदर ही सब कुछ वैनिश हो जाता है. तो डस्टबिन से मनुष्य की करहाने की आवाज आने लगी. उन्होंने ओपन करके देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे अंदर था, और बहुत सारे चूहे ना शरीर को कतर रहे थे. तो उन्होंने नजदीक ही एक घर में बेल बजा के अपने आश्रम में फोन किया, एम्बुलेंस मंगाया, व्यक्ति को लेके गए. डॉक्टर ने कहा लास्ट जो है 10-15 मिनट्स बचे हुए हैं. तो मदर टेरेसा ने डेटॉल लेके उसके जख्म साफ करना शुरू किया. तब वो व्यक्ति बोलने लगा कि मैं लेप्रेसी का पेशेंट हूँ. तो बेटे ने फिर जो है डिजीज कंटेजियस है इसलिए मुझे डस्टबिन में डाल दिया. तो तभी मदर टेरेसा ने कहा कि ये घोर कलयुग है, अभी इससे ज्यादा और क्या देखना है, बाकी रह गया है, इससे ज्यादा दुनिया में और क्या, हाइट ऑफ एवरीथिंग. तो कहने का भाव ये है कि कलयुग अंत में आते आते संबंधों में ऐसी दरार आ गई. जब लास्ट स्टेज थी मदर टेरेसा की, तो उन्होंने चार घोड़े देखे थे विनाश के, कि एक प्रकृति द्वारा, एक जो है वो ग्रह युद्ध, एक एटॉमिक युद्ध, एक ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो इतने खराब हो रहे, उसका मन का अंदर द्वंद जो चल रहा है, ये युद्ध, ये सब बढ़ता जाएगा अंत, और यही विनाश का कारण होगा. तो ये जो कलयुग के सारे चिन्ह द्वापर युग में लिखे गए, ये सारे चिन्ह हम देख रहे कि नहीं देख रहे. तो अभी हम एकदम क्लाइमेक्स में आकर पहुंचे, और ऐसे समय पे जो सभी ने कहा कि संगम योग, परमात्मा का इस धरती पर दिव्य अवतरण हो चुका है, जो आपको परमात्मा के लेसन में निर्जा बहन ने बताया कि वो परमात्मा इस सृष्टि में हम सभी को सुखमय संसार जो आने वाला है वहां ले चलने के लिए आए हैं. तो ये सृष्टि में ये महापरिवर्तन होने वाला है, इसीलिए भगवान आए हैं. आज हम देखते हैं कि सभी मनुष्य लड़ाई ही कर रहे हैं, कहाँ परिवर्तन लाना है, भगवान का मैसेज क्या है, परिवर्तन कहाँ करना है. तो एक टाइम भी हो रहा है, एक छोटी सी स्टोरी सुना के वाइंड अप करती हूँ. कि एक बार है ना, एक कबूतर का झुंड, ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको पूछूंगी कि कहाँ हमें परिवर्तन, समय के साथ चलना है. अगर समय को अपनी लाइफ का वरदान बनाना है तो क्या करना होगा, ये जवाब मैं आपसे चाहूंगी. तो स्टोरी सुनने के बाद आप बताना मुझे कि एक बार है ना, पीजन्स रहते थे मंदिर में, जो मंदिर के गुंबज में बहुत सारे कबूतर रहा करते थे. तो उस मंदिर का बहुत बड़ा उत्सव का समय आया, तो रिनोवेशन का काम शुरू हुआ, तो ऊपर गुंबद से शुरू हुआ. तो सभी कबूतरों ने सोचा कि अभी तो बांबू लग रहे हैं, अभी तो कुछ तो काम चल रहा है, अभी क्या करेंगे. तो उनके जो लीडर है, उन्होंने बोला कोई दूसरा जगह ढूंढना पड़ेगा अपने को रहने के लिए. तो नजदीक ही देखा, बिल्कुल बगल में एक चर्च था, और वहां पर ऊपर गुंबज में कुछ कबूतर पहले से रहा करते थे. तो वो वहां गए और फिर देखा, तो उन वो चर्च वाले कबूतरों ने कहा हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, आप आ जाओ. तो वो लोग सब माइग्रेट होके चर्च में जाके रहने लगे. कुछ महीने बीतने के बाद क्रिसमस आ रहा था. तो उन लोगों ने भी सोचा कि हम थोड़ा सा चर्च को रिनोवेट करें, तो ऊपर गुंबद से काम शुरू किया। फिर वो मंदिर वाले चर्च वाले सोचने लगे अभी कहाँ जाए, तो थोड़ी ही दूरी पर मस्जिद था और वहां पर कुछ कबूतर पहले से रह रहे थे। तो ये दोनों कबूतरों ने जाके देखा तो मस्जिद वाले कबूतरों ने कहा चलो आ जाओ यहाँ हम मिल के रहते। सब रहने लगे, तीनों रहने लगे, मंदिर वाले चर्च वाले मस्जिद वाले। फिर कुछ समय के बाद ईद का समय आया, उन लोगों भी को भी हुआ कि हम भी थोड़ा सा मस्जिद को रिनोवेट करें, थोड़ा पेंट करें, तो ऊपर गुंबद से काम शुरू हुआ। तीनों सोचने लगे अब कहाँ जाए, अब क्या ऐसा कहाँ टॉवर इतना ऊंचा मिलेगा। तो थोड़ा सा उन्होंने सर्वे किया तो देखा कि जो मंदिर था पहले वाला उसका तो फंक्शन हो चुका था और वो खाली था। तो वो मंदिर वालों ने कहा अभी हमारा मंदिर तो खाली है, चलो हम सब वहां चलते हैं। तो सारे मंदिर वाले मस्जिद वाले चर्च वाले सारे मिलके मंदिर में चले गए। अब एक दिन एक कबूतर का छोटा सा बच्चा मंदिर में नीचे की ओर आया चलते चलते, सीढ़ी पे आकर देख रहा था वो सारे लोगों को। तो अपनी मम्मी को सवाल पूछता है कि मम्मी कुछ लोग अपने पास आते, कुछ लोग वहां वो चर्च में जा रहे हैं और कुछ लोग मस्जिद में जा रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। तो मम्मी कहती है कि ये जो है हिंदू लोग हैं जो मंदिर में आ रहे हैं, वो सभी हमारे क्रिश्चियन भाई हैं जो चर्च में जाते हैं, और वो मुसलमान भाई है जो मस्जिद में जाते हैं। तो वो कबूतर का बच्चा बोलता है कि लेकिन हम लोग जब मंदिर में रहते थे तो भी हम कबूतर थे, फिर हम सभी जब चर्च में गए तो भी हम कबूतर ही है, और जब हम मस्जिद में गए तो भी हम कबूतर ही है, और मस्जिद से फिर से हम मंदिर में आए तो भी हम कबूतर ही है। तो इन लोगों में और हमारे में ऐसा डिफरेंस क्यों? तो मम्मी जवाब देती है कि हम लोग बहुत ऊंचाई पर रहते हैं इसलिए हमारे थॉट्स बहुत एलिवेटेड है, ये लोग धरती पर रहते इसलिए डिफरेंस इन लोगों के अंदर है। तो अब बताइए कि परिवर्तन कहाँ लाना है, कहाँ लाना है? हमारे विचारों, आप सभी बहुत ऊपर ले जानी है सोच को, वेरी नाइस। तो कबूतरों की तरह गुंबज में रहना है, माना थॉट्स को हमें एलिवेटेड करना है, और यही मैसेज देने के लिए ईश्वर को धरती पर आना पड़ा, क्योंकि मनुष्य की सोच को बदलना ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, है ना, धन से पैसे से बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन सोच को चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी देने के लिए ईश्वर सिर्फ मैसेज नहीं दे रहे, ईश्वर ताकत भी दे रहे हैं, ईश्वर सिर्फ ज्ञान ही नहीं दे रहे लेकिन वो आध्यात्मिक बल भी हमारे अंदर भर रहे हैं। तो वो मैसेज देने के लिए परमात्मा इस समय इस धरती पर अवतरित है। हमारे सामने हमारे आदरणीय दिव्या प्रभा दीदी जी भी आए हैं, हम सभी एक हाथ की ताली से उनका वेलकम करेंगे। तो वो जो समय है जब परमात्मा इस धरती पर आए उसको संगम युग कहा जाता है, और ये संगम युग में ईश्वर एक गोल्डन डायरी लेकर आए हैं, और वो नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमको एक पोयम थी अबू बिन आदम, उसमें सिल्वर डायरी में उनके नाम थे जो भगवान को बहुत याद करते, और गोल्डन डायरी में उनके नाम थे जिनको भगवान याद करते। और आप सभी का नाम कौन सी डायरी में है? गोल्डन डायरी में है ना, अवश्य ही आपका नाम उस गोल्डन डायरी में होगा, क्योंकि यहाँ जो आता है वो ईश्वर की प्रेरणा से शक्ति से आता है, और उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर सके, और इसीलिए आपके लिए ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है जो ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है। तो हम सभी वर्तमान समय कलयुग में है कि संगम युग में है? हाँ, तो अभी सभी संगम युग में है पक्का। तो ये मैसेज हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो समय वरदान हमारे लिए तब बनेगा जब हम ये समय टाइम कॉन्शियस को होकर हम समझे कि हम ये संगम युग में हैं जहाँ ये महापरिवर्तन होना है। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया सारिका बहन, अपने बहुत अच्छी समय की पहचान दी। कहते कि अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की महक दूरियों से कम नहीं होती। जीवन में अगर साथ हो सच्चे रिश्तों का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती, कम नहीं होती।